नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू के प्रत्याशियों की घोषणा आज संभव। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए जाने से महागठबंधन में टकराव बढ़ा, कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष के आसार। जदयू विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती राजद में शामिल, पूर्णिया से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना। और चुनाव आयोग ने कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के प्रमुख घटक दल जदयू ने अपने खाते में आई सभी 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं, जिनकी आज घोषणा किए जाने की संभावना है। पार्टी ने सीवान, सीतामढ़ी और किशनगंज लोकसभा क्षेत्रों से नए चेहरों पर भरोसा जताने का इरादा स्पष्ट कर दिया है। सीवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट मिलने की प्रबल संभावना से मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट कटना तय है। वहीं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू की जगह विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। किशनगंज से मुजाहिद आलम पार्टी प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भागलपुर से अजय कुमार मंडल और बांका से गिरधारी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के स्पष्ट संकेत हैं। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलारी चंद्र गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत और वाल्मीकिनगर से सुनील कुशवाहा जदयू प्रत्याशी होंगे। इन सभी लोगों ने आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इधर काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलने से मौजूदा सांसद महाबली सिंह का टिकट कटना भी तय हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए जाने से महागठबंधन में टकराव बढ़ गया है, कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष के आसार दिख रहे हैं। महागठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। इसके बावजूद राजद ने अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। पहले चरण की 4 सीटों औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही 5 अन्य उम्मीदवारों को भी पार्टी ने सिंबल दे दिए। वहीं राजद ने अब तक 12 उम्मीदवारों को सिंबल प्रदान कर दिया है। इधर महागठबंधन में शामिल वाम दलों सीपीआई और सीपीएम ने भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। जदयू के विधायक सह पूर्व मंत्री बीमा भारती ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। श्रीमती भारती पूर्णिया जिले के रूपौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बीमा भारती पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन की प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। इधर विधायक के महागठबंधन में शामिल होने के बाद टकराव की स्थिति बन गई है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। इधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा और अन्य समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए हैं। पटना में जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा के भी कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने या संसदीय क्षेत्र बदलने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। शिवहर की सीट जदयू के खाते में गई है, जहां से जदयू ने लवली आनंद को टिकट देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण शिवहर से बीजेपी की मौजूदा सांसद रमा देवी का टिकट कटना तय है। वहीं गया सीट से हम प्रमुख जीतन राम मांझी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद मौजूदा जदयू सांसद विजय मांझी का टिकट कट गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने उत्तर प्रदेश के प्रमुख अजय राय को वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 1,80,00,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। चुनाव आयोग पहली बार मत देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आई वोट फॉर श्योर जैसे कई सोशल मीडिया अभियान चला रहा है। एक रिपोर्ट।
इस बार करीब 19 करोड़ 74 लाख मतदाता 20 से 29 साल की उम्र के हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 17 साल से अधिक उम्र के युवाओं से 13 लाख से अधिक अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोकतंत्र के त्योहार में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव जैसे जाने माने व्यक्तित्वों का सहयोग ले रहा है। युवाओं की भागीदारी में बाधाओं को दूर करने के लिए आयोग टर्नआउट कार्यान्वयन योजना लागू कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश के सभी जिलों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता के नोडल अधिकारियों को दिया गया है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया है कि राष्ट्रीय मतदान औसत से अधिक मतदान राज्य में कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को पूरी सुविधा देने का भी निर्देश दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने बाल विकास परियोजना की सेविका और सहायिकाओं को मतदाता शपथ दिलाई तथा उन्हें ग्रामीणों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जिलों में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब और 20 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विभिन्न जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। औरंगाबाद जिले में बिना अनुमति बैठक करने, मधेपुरा में लाउड स्पीकर बजाने, मुजफ्फरपुर और पटना में बिना अनुमति बैठक करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बेगूसराय जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए मुंह ढक कर आने वाली महिलाओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए उनके घर पर ही मतदान की व्यवस्था की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज पटना पर भी सुने जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को गर्मी के महीनों के दौरान अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि गर्मी के महीनों में तापमान बढ़ने के कारण अस्पताल में आग एक बड़ा खतरा बन जाता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक साथ मिलकर काम करने का निर्देश दें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कहा गया है कि अस्पतालों को अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट और अलार्म जैसे अग्निशमन उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। इसमें अग्निशामकों की समाप्ति तिथियों की जांच करने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना शामिल है कि हाइड्रेंट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है या नहीं और उनमें पानी का दबाव भी पर्याप्त हो, साथ ही अग्नि अलार्म भी पूरी तरह दुरुस्त होना चाहिए। आज होलिका दहन है। होलिका दहन फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि की रात के समय में किया जाता है। इस वर्ष भद्रा नक्षत्र का साया रहने के कारण होलिका दहन के एक दिन बाद होली मनाई जाएगी। होली को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। होली को लेकर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। इधर होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में कड़ी निगरानी बरतने का निर्देश दिया है। वहीं पटना जिले में विभिन्न स्थानों पर 41 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम में बदलाव हो रहा है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश का सिलसिला रुक गया है और अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज और अररिया समेत राज्य के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य भागों में मौसम शुष्क रहेगा।
मौसम वैधशाला पटना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार होली के पूर्व संध्या से लेकर 24 मार्च की संध्या को होलिका दहन के समय से रंगोत्सव के दिन 25 मार्च तक होली के दौरान अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क, आसमान साफ, अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। राज्य के हिमालय के तराई एवं उत्तर पूर्व के जिलों में 1-2 जगहों पर 25 मार्च को मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस वर्ष कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का आयोजन अलग अलग करने का निर्णय लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पहले कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा एक साथ ली जाती थी। उन्होंने कहा कि विशेष परीक्षा में वैसे छात्र छात्राओं को शामिल होने का मौका मिलेगा जिन्होंने अपना निबंधन तो कराया लेकिन किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे सके और परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। श्री किशोर ने कहा कि इस वर्ष इंटर के तीनों संकाय में 5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च से 4 अप्रैल तक परीक्षार्थी पूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की ली गई सक्षमता परीक्षा का परिणाम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है। मुंगेर जिले की एक अदालत ने महिला की हत्या के मामले में दोषी साजन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पटना जिले के पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के दोषी गोली कुमार वर्मा को 7 साल की कारावास और 30,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पटना जंक्शन पर मद्य निषेध विभाग ने रेलवे के 7 अभियंताओं समेत 10 लोगों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया है। सहायक अबकारी आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 4 सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 3 जूनियर इंजीनियर और 3 सहायक कर्मी शामिल हैं। वहीं जिले के मनेर थाना क्षेत्र की पुलिस ने गंगा नदी में एक नाव से 1380 लीटर शराब जब्त की है। भोजपुर जिले के डुमराव थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के ककड़िया गांव में जहरीली पेय पदार्थ के कारण 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इधर पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में 2 चार पहिया वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने ईडी, आईटी और आईबी, सीबीआई के विभिन्न राजनेताओं के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई पर लिखता है, दिल्ली से बंगाल तक ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे। दिल्ली में आप विधायक गुलाब सिंह यादव, पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा और चंद्रनाथ सिन्हा के यहां हुई छापेमारी। प्रभात खबर लिखता है, सीट बंटवारे में राजद के फैसले से कांग्रेस में खलबली, अलग लड़ने पर हो रहा मंथन। दैनिक भास्कर ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च करने की सीमा पर खबर दी है, हर प्रत्याशी औसतन 6 करोड़ रुपए खर्च करेगा, सीमा 95 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम पर लिखा है, इंटरमीडिएट में छात्राओं का पलड़ा भारी, 6 वर्षों में सबसे अच्छा रिजल्ट, तीनों संकायों के 24 टॉपरों में 13 छात्राएं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, 3री से 6ठी कक्षा तक होगा नया पाठ्यक्रम। आज अखबार की सूची है, एनपीएस कर्मियों को 1 से कराना होगा आधार वेरिफिकेशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू के प्रत्याशियों की घोषणा आज संभव। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए जाने से महागठबंधन में कटाव बढ़ा, कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष के आसार। जदयू विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती राजद में शामिल, पूर्णिया से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना। और चुनाव आयोग ने कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।